ओम शांति। आज 4 जनवरी 2025, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी सुनी और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप गूगल मीट पर जुड़ सकते हैं। उस पर आप सवेरे 6 बजे शाम को 4 बजे रोजाना एक ही लिंक है। इसी के साथ साथ हम कौन बनेगा पद्मा पद्मपति, सभी बनेंगे पद्मा पद्मपति। इस कार्यक्रम में भी आप साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसका शाम को 8 बजे YouTube पर लाइव भी होता है और गूगल मीट पर भी आप जुड़ सकते हैं इसी लिंक से। यही एक लिंक है जिसके द्वारा हम उसमें भी जुड़ सकते हैं, सवेरे 6 बजे शाम को 4 बजे और रात साय 8 बजे भी। और यदि आपको ये लिंक नहीं मिल रहा है तो इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, जिस पर आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अपना कोई भी सुझाव दे सकते हैं जो सबके हित में हो, तो उसे हम मुरली मंथन में जोड़ देंगे ताकि सभी उसका लाभ उठा सके। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो, जब तुम अशरीरी बन बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए ये दुनिया ही खत्म हो जाती। देह और दुनिया भूली हुई है। जब हम अशरीरी अर्थात सिर्फ मैं आत्मा हूं, शरीर है ही नहीं, शरीर मेरा रथ है ये भी स्मृति नहीं, मैं अशरीरी बिना शरीर के केवल और केवल आत्मा बस। फिर मुझ आत्मा के साथ ये देह नहीं है और देह के संबंधी भी खत्म, ये दुनिया भी खत्म, मैं और मेरा बाबा मीन्स केवल और केवल बाबा की श्रीमत को चाहे हम मन मना भाव करें, चाहे हम उस पे चलने के लिए जो भी पुरुषार्थ करे, परंतु उसमें कंडीशन है देह की भी स्मृति नहीं, कि मेरी देह है ये भी स्मृति नहीं, तब मैं अशरीरी आत्मा हूं। जब मैं मेरी देह नहीं तो देह के संबंधी भी नहीं और दुनिया भी। इस समय पर सिर्फ बाबा की श्रीमत और मैं बस और कुछ नहीं, उस पर ही मुझे चलना है, उसी पर ही मुझे रहना है, उसी पर ही काम करना है। ये तभी संभव है जब हमें पूरा पूरा निश्चय हो बात के ऊपर। निश्चय तो पूरा होता है परंतु हमारे जीवन में इतने समय से जो माया घुसी हुई है वो स्वीकार नहीं करने दे। स्वीकारना जरूरी है, इसी में मेहनत है, इसके लिए ही बाबा हमें मन मना भव मध्यादि भव मां मेकम याद करो ये महामंत्र देते हैं।
हमारे आगे संस्कार बने हुए हैं, हमारे
बने हुए हैं, परंतु हमने बैठकर ये समझाना है ये देह के कारण बने थे, अज्ञानतावश बने थे, ज्ञान का अभाव था, अब तुम जाओ तुम्हारी छुट्टी। इसके लिए ही बैठकर हमें मन मना भाव करना है। ये बाबा को भी मालूम है, इसलिए बाबा ने इनको कहा कि ये जो है हमारे बने हुए संस्कार हैं, ये हमारे कोई परमानेंट संस्कार नहीं है, हमने इनको अपने जीवन से छुट्टी देनी है। इसी को ही बैठकर हमने एक एक बात को बैठकर हमें समझाना है। जैसे जैसे हमारी बुद्धि ये स्वीकार करती जाएगी, ऑटोमेटिक हम इस देह से न्यारे होते जाएंगे, देह के आकर्षण से मुक्त होते जाएंगे। प्रश्न, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? बताओ, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? अजीब प्रश्न है। उत्तर, अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है, परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहें, पूरा योग युक्त रहें, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो। एक बाप से सच्ची प्रीत होना माना किसी और का कहना नहीं मानना, सुनना ही नहीं, मानना तो बाद की बात। किसी का भी कहना माना तो बाप से सच्ची प्रीत नहीं है। किसी के नाम रूप में लटके हुए हुए ना हो, किसी के नाम रूप में ये मेरी दीदी है, ये हमारे बड़े भाइया हैं, अब एक बहन कह रही थी गुरुजी हैं, मुसीबत है। मतलब बाबा की मुरली है, बाबा हमें पढ़ा रहा है, सुनते हुए अच्छी तरह ध्यान से सुने कि कहीं कोई भी अपनी बात मिक्स करके हमें गुमराह ना कर दे, कोई भी गुमराह कर सकता है। यह अंधविश्वास हो जाता है कि ये बहन जी बहुत अच्छी मुरली सुनाती है और ये भी गुमराह कर सकता है, क्योंकि मुरली बाबा सुनाते हैं, मुझे बाबा की मुरली समझ करके उसको सुनना है, जहां बाबा की मुरली से कुछ भी अलग बात आए तो उसको चर्चा करनी है, मंथन करना है, आंखें खोल करके। तीसरा नेत्र हमें मिला है, जो ज्ञान हमें मिला है उस ज्ञान के आधार पर मुरली की हर नई बात को असत करना है, आप बंद करके असत नहीं करना। क्योंकि जितने भी धर्म पिताए आएंगे उनके प्रति उनकी अंधी आस्था ही उनको सत्य तक पहुंचने में रोकेगी, अंधी आस्था। क्योंकि आना तो सबको है, आएंगे, अपना पाठ बजाएंगे, और जिन्होंने जिस भी धर्म के अंदर अपनी आस्था होगी उसी में जाएंगे, उनका पाठ जिसमें है, और जिन्होंने नहीं जाना है वो नहीं जाएंगे। परंतु मेरा श्रेष्ठ भाग्य केवल और केवल बाबा की श्रीमत में, शुद्ध श्रीमत में है, एकदम जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं हो, जिसमें मिक्सिंग हो गई पता भी नहीं चलेगा कि अमृत के साथ जहर भी चला गया। इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है, ये माया है। क्योंकि हमने किसी भी देहधारी से प्रीत रखी, माया है ये माया है। किसी भी देहधारी से प्रीत रखें, क्योंकि मुझे परमात्मा पर पूरा यकीन नहीं है। हम इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं अपने आप को, क्या करें, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। बाबा को पढ़े लिखे नहीं चाहिए, बाबा की बात को समझने के लिए पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। बुद्धि से प्रार्थना है, और ये बुद्धि बाबा दे रहा है। जो जो बात जितनी समझ में आती जा रही है उसी के आधार पर ही चर्चा करनी। इसी में बच्चे धोखा खाते हैं, इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, धो कर खाओ। धोखा बताता है धो कर खाओ, अच्छी तरह समझ कर खाओ, सोच समझ कर ग्रहण करो तो धोखा नहीं खाएंगे। कोई भी चीज आए उसे बाबा की श्रीमत पर धो, चेक करो, जो भी उसमें मेल मिले उस मैल को उतार कर फेंक दो, फिर खाओ, फिर माया। क्योंकि माया जाएगी कैसे, 80% सच है, 90% सच है, बाकी जो है ना माया खुद मिक्स होकर के जा रही है। इसलिए धोना है, धोकर खाना है। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मर के चर्चा होगी वो भी तेरी गली। हमें परमानेंट मारना चाहता है, अब हम उसकी बात पर मरने को तैयार हैं, और हमने कह दिया है ओम शांति, मर गए। ओम शांति कहना माना मर गए। यदि ओम शांति कहने के बाद भी हम नहीं मरे तो फिर मर भी नहीं सकते। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ ही ना सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूँ। मैं ब्रह्मा मुख द्वारा वेदों शास्त्रों का सार तुमको समझाता हूँ। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ ना सके, गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकता। गीत जो मर्जी आती है बना देते हैं, थोड़ा सा कोई सत्संग सुन लिया, थोड़ी सी कोई बात सुन ली, बस उस पर गीत बना दिया, तुक लगा दी। उस तुक लगाने के चक्कर में कुछ ना कुछ मिक्स हो जाता है। इसीलिए बाबा के भजनों को भी, बेशक वो बाबा के बच्चों ने गीत बनाए हैं, परंतु वो पूरी तरह परिपक्व नहीं है। उनके अंदर भक्ति वाले विचार भी जुड़े हुए हैं, और वो भक्ति के विचार भी उसके साथ चिपक जाते, और ज्ञान के साथ भक्ति रूपी जहर भी साथ के साथ चला जाता है। और उस गीत, वो गीत इतने मिश्र होते हैं कि सब झूमने भी लगते हैं। पता नहीं दरबार वाला गीत है, सोना मेरे बाबा दा दरबार है, तो मतलब बाबा दा दरबार है, कहाँ है दरबार, किस बात का दरबार, क्या होता है दरबार, और वो भक्ति की तरह ही जैसे वो मंदिरों के लिए डांस करते थे ऐसे ही उस पर भी वो डांस कर रहे होते हैं और झूम रहे होते हैं बड़े खुश। गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, बात ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है, आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है, दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ और शरीरी बन, बाप को याद करो। ये दुनिया खत्म हो जाती है, ये शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय इनके लिए मनुष्य सृष्टि है ही नहीं, आत्मा के लिए मनुष्य सृष्टि है ही नहीं, है ही नहीं। आत्मा नंगी बन जाती, नंगी माना, नंगी माना ना अंगी, बिना अंगों के, बिना शरीर के। बस ये संस्कृत के कारण, शब्दों के मिल जाने के कारण ना अंगी से नंगी बन गई और मतलब बदल गया। फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है, फर्क सिर्फ इतना है, शरीर से अलग ना अंगी। और हमने चर्चा भी किया आत्मा वाले चैप्टर के अंदर कि आत्मा इस संसार में आएगी तो या तो वो सूक्ष्म शरीर में होगी या फिर स्थूल शरीर में। बिना सूक्ष्म शरीर, बिना स्थूल शरीर के वो आत्मा परम धाम में होगी, परम अवस्था में होगी। इसलिए एक बार आत्मा परम अवस्था से बाहर आ गई तो वो बिना शरीर के नहीं रह सकती। बिना शरीर के नहीं रह सकती, ये बात बहुत अच्छी तरह से हमें अपनी बुद्धि के अंदर बिठा देना। वो एक शरीर छोड़ते ही उसी सेकंड में दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, चाहे उसका दूसरा शरीर दुनिया के किसी भी कोने में, कितने भी दूरी पर, चाहे वहां ट्रेन, बस, रेल कुछ भी ना जाता हो, वो वहां जा सकता, इतनी फास्ट स्पीड है, इतना तीखा रॉकेट है। आत्माएं भटकती नहीं है।
पुनर्जन्म में कैसे जाते हैं?
पुनर्जन्म में एक सेकंड में, यहां से कोई आत्मा ने शरीर छोड़ा न्यूजीलैंड के अंदर किसी घने जंगल के अंदर, उसकी मां ने गर्भ त्यार किया है, उसी सेकंड में उसी गर्भ में प्रवेश करेगी, उसे मालूम है कि मेरा गर्भ कहां है। एक ही सेकंड में यहां से निकलना और वहां पहुंचना उसी सेकंड में होगा, निकलना भी और प्रवेश करना भी, इतना तीखा रॉकेट है। हाँ जी,
खुद को नंगा समझेंगे, आत्मा समझेंगे तो पूरे संकल्प बंद हो जाते भाई,
हो जाएंगे ना, वही तो बाबा समझा रहे हैं। इसलिए तो उसमें मेहनत है, फिर संकल्प कैसे आएंगे? संकल्प निरसंकल्प ही तो बाबा करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने झमेले अपने आप नहीं पकड़े हुए, वैसे नियम अनुसार तो ड्रामा के अनुसार हम सबको झमेले मिले हुए हैं, हमने किए हुए हैं, वही हम निपटा रहे हैं, चाहे वो सुख के हैं तो चाहे वो दुख के हैं। जहां हमें सुख और दुख की फीलिंग नहीं होगी, आज शरीर होते ही शरीर ही नहीं है तो सुख और दुख दोनों ही नहीं होंगे। इसलिए बाबा ने कहा मैं सतयुग कलयुग से पार, सुख और दुख से भी पार, और हमें कहां ले जाएगा? हद बेहद से पार हूं, तो हमें कहां ले जाना चाहता है वो? हद बेहद, सुख और दुख से पार। तो उसका सारी ट्रेनिंग उसी तरफ है कि हमें इनसे पार जाना है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है, पुनर्जन्म हो गया, वापिस महातत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है, महातत्व में नहीं जाती, ब्रह्मलोक में नहीं जाती, परम धाम में नहीं जाती, शांति धाम में नहीं जाती, मुक्ति धाम में नहीं जाती, कहीं नहीं जा सकती, सिर्फ एक उसके लिए इस संसार में एक बार आने के बाद एक शरीर छोड़ा तो दूसरे शरीर में उसको जाना है। अब चाहे आप रोवो, चाहे आप खूब पागल हो जाओ, उसके पीछे डिप्रेशन में चले जाओ, वो आप आत्मा का पार्ट, उसने तो अपना पार्ट बजाने जहां जाना था वो तो वहां गई। इस समय कोई सूक्ष्म शरीर की जरूरत नहीं। ड्रामा में यदि उसने सूक्ष्म शरीर से एक सेकेंड, एक मिनट, एक घंटा, दो दिन, चार दिन सूक्ष्म शरीर से पाठ बजाना है, जैसे ब्रह्मा बाबा बजा रहे हैं, बजाया ब्रह्मा बाबा ने, तो वो उसका ड्रामा में पार्ट है, तो वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट बजाएगा। परंतु सूक्ष्म शरीर का ड्रामा में पार्ट है तो नहीं, तो उसे स्थूल शरीर में ही एक शरीर छोड़ने से एक ही सेकंड में उसने वहां जाना है, इसमें सूक्ष्म शरीर पहनना पहनने की जरूरत ना है। सूक्ष्म शरीर तो ड्रामा में पार्ट है, कोई कार्मिक अकाउंट ऐसा है जिसका हिसाब किताब बराबर करने के लिए स्थूल शरीर के माध्यम से नहीं हो सकता, और वो स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर के द्वारा होना है, तो आत्मा सूक्ष्म शरीर पहनेगी। देखिए, ड्रामा में सारे ड्रामा को सोचने का टाइम ही नहीं देता। अब आप सोचिए कि ड्रामा को सोचे तब ना जब हम बैठे, आत्मा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, जिस समय वो आत्मा शरीर छोड़ रही है उसे स्मृति नहीं है कि मैंने कहां जाना है, परंतु जैसे ही उसने शरीर छोड़ा उसी सेकंड के अंदर उसको स्मृति इतनी आती है कि मैं सीधा वहां मेरी माँ है, अमेरिका या अफ्रीका या रशिया के वो दूर दराज के अंदर उसने मेरे लिए गर्भ तैयार कर रखा है, ये बताने में मैंने कितना टाइम लगा दिया, वो वहां पहुंच गई, छोड़ते ही पहुंच गई, अब उसे क्या सोचने की जरूरत चाहिए, उसको सीधा क्लिक करेगा गो। सिर्फ बुद्धि, उसका मन हट गया ना, शरीर से हटते ही, आत्मा शरीर से निकलते ही मन हट गया, मन का काम बंद, संकल्प देने वाला काम बंद, और बुद्धि के सामने सीधा एकदम रॉकेट पर पैर रखा, पैर है नहीं वैसे, बस वहीं पहुंच गए, पैर रखने का टाइम नहीं, सीधा का सीधा यहां से कदम उठाया और वहां टिका दिया। बिल्कुल
ज्ञान
है, आत्मा के अंदर है, परम धाम चली गई तो क्या करेंगे ज्ञान का,
ज्ञान के साथ ही तो मिलेगा,
क्या मिलेगा,
पद मिलेगा,
बस पद मिलेगा जब शरीर लोगे तब मिलेगा, जब तक आप आत्मा में रिकॉर्डेड अविनाशी है ना, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, 5000 साल के अंदर किस सेकंड कब क्या क्या करना है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसमें तो किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जैसे ही शरीर छूटा तो ज्ञान का राज खत्म, और फिर शरीर धारण करेंगे तो फिर आ जाएगा मुझे क्या करना है, ऑटोमेटिक आएगा मुझे उठना है, कहां जाना है, क्या करना है, खाना है, पीना है, नहीं खाना है, नहीं पीना है, जो कुछ भी करना है वो शरीर के द्वारा ही। पुराने संस्कार का कोई मतलब नहीं है, कोई बहुत बड़ा डाकू है, बहुत बड़ा अत्याचारी है, बहुत बड़ा अन्याय करने वाला है, उसको भी हमने देखा है कि वो एकदम चेंज हो जाता है, उसके अंदर वो संस्कार इमर्ज हो जाता है, वहां वो किसी की रक्षा भी कर जाता है, किसी को सुख भी पहुंचा जाता है। कर रहा है अत्याचार, अन्याय, जो भी कितना बड़ा पाप और भ्रष्टाचार कर रहा हो, पर तो उसने किसी को सुख देना है और बीच में उसके सुख का पार्ट आ गया है, तो अचानक ही उसके अंदर वो सुख देने वाला संस्कार इमर्ज होगा और उस आत्मा को वो सुख दे देगा। ड्रामा, ड्रामा अनुसार अपने अपने टाइम पर जिस संस्कार की जरूरत है वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा और बाकी मर्ज हो जाएगा। इतना आज बड़ा क्लियर बाबा हमें समझा रहे हैं। उड़कर दूसरे शरीर में जाती है, यहां इस आकाश तत्व में ही उनको पार्ट बजाना है। ये लाइन भी याद रखनी है। बाबा ने कहा तुम आत्मा जब शरीर छोड़ती हो तो आकाश तत्व में होती हो, परंतु मैं आकाश तत्व से पार होता हूं, मैं आकाश तत्व से भी पार होता हूं हर समय, क्योंकि मैं परम अवस्था में। तुम परम अवस्था में, यहां से शरीर छोड़ा वहां आपको शरीर लेना है, इसलिए आपको कोई समय नहीं मिलता परम अवस्था का अनुभव करने का, कारण कि वो एक सेकंड के अंदर जो यहां से ट्रेवलिंग करने का जो नैनो सेकंड भी है, मतलब एक सेकंड का हजारवां हिस्सा, लाखवां हिस्सा भी यदि उसमें लगा है वहां पहुंचने में, समय तो लगा ना, तो वो जो समय है उस समय आप आकाश तत्व में होते हो और मैं उस समय भी परम अवस्था में होता हूं। मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं तो ना ये कर्म बंधन, ना वे कर्म बंधन रहता है। ये लाइन समझने वाली है। ना ये कर्म बंधन, जैसे ही शरीर को छोड़ा इस शरीर के साथ देह के संबंधियों के साथ मेरा कोई कर्म बंधन नहीं। शरीर छोड़ते हैं तो ना ये कर्म बंधन और ना वे कर्म बंधन रहता है। शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, फिर दूसरा शरीर लेते तो वे कर्म बंधन शुरू होता। मगर उस जितने जितने नैनो सेकंड, मतलब एक नैनो सेकंड लगा, दो नैनो सेकंड लगा यहां से वहां तक जाने में, तो ना इधर का कोई कर्म बंधन है ना उधर का कर्म बंधन है, तब सिर्फ एक रॉकेट को वहां से वहां जाना। नैनो सेकंड होता है एक सेकंड का हजारवां हिस्सा, एक सेकंड के हजार हिस्से किए जाए उसमें से, मतलब एक नैनो सेकंड लगता है या दो नैनो सेकंड लगते हैं या चार नैनो सेकंड लगते हैं वहां तक पहुंचने में, वो चार नैनो सेकंड तक ना तो इधर के कर्म बंधन में था, हाय मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का, कोई संकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, शरीर छूटते कोई संकल्प नहीं, वंडरफुल बात। हाँ बिल्कुल, कर्म बंधन ना इधर का है ना उधर का है, वो होती कितनी देर की है, नैनो सेकंड भी नहीं, उस सेकंड की भी नैनो, जितना समय जितने नैनो सेकंड छोड़ने में लगे, वहां जाने में लगे और उस शरीर में, जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है तब तक इस शरीर का कर्म बंधन है। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे माइक को अच्छी तरह से ताकि बाकी भाई बहनों को सुनाई दे, माइक को अपने नजदीक करो, जैसे फोन करते हो ऐसे माइक को नजदीक करो।
आ रहा है क्या आवाज?
हाँ आप ठीक है।
तो मेरा बोलने का मतलब शिव बाबा जब आते हैं एक बार परम धाम से तो फिर वापस जाते नहीं क्या जब तक संघ में जब तक
शिव बाबा पर ये कानून लागू नहीं होता।
अच्छा
क्योंकि उसने सूक्ष्म शरीर उसके अपना सूक्ष्म शरीर भी नहीं है उसका अपना स्थूल शरीर भी नहीं है। हमारा इस दुनिया में आने का मतलब है हम सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर में रहेंगे।
फिर बाबा ट्रैवल कैसे करते हैं इधर से उधर?
बाबा को ट्रैवल करने का इतना फास्ट है कि जैसे हमारे हम आत्माएं सोचिए ना कि यहाँ से हमको वहां तक जाना है किसी भी दुनिया के कोने तक जाना है तो नैनो सेकंड भी नहीं लगते। नहीं मतलब जो इतनी बात कहते ना कि बाबा ने समझा देना वो भी एक आत्मा है ये हमारे सारे नियम उस पर भी लागू होते हैं। हम इस संसार में आते हैं तो हम अपने लिए स्थूल शरीर बनाते हैं और यदि स्थूल शरीर को छोड़ते हैं कोई हमारा कार्मिक अकाउंट सूक्ष्म शरीर वाला है तो हम सूक्ष्म शरीर भी बनाएंगे परंतु परमात्मा को ना तो सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है। उसने लेना है तो स्थूल शरीर भी ब्रह्मा के तन का आधार लेना है और सूक्ष्म शरीर भी ब्रह्मा के तन ब्रह्मा का ही सूक्ष्म शरीर का आधार लेना। नहीं लेना है तो परम अवस्था में ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर तो रहेगा ना जब भी चाहे लेना चाहे वो ले सकता है। स्थूल शरीर होते हुए भी मेरे को यदि सूक्ष्म शरीर से किसी को दुख पहुंचाना है या सुख पहुंचाना है तो मैं इधर सो जाऊंगा शरीर को सुला करके सूक्ष्म शरीर से चला जाऊंगा। मुझे कुछ सूक्ष्म शरीर बनाने में टाइम थोड़ा लगता है कोई पैसे थोड़ा खर्च होते हैं कोई मैंने ऑर्डर थोड़ा देना है ड्रेस सिलवानी थोड़ा है।
तो शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा का शरीर यूज कर रहे हैं
सूक्ष्म शरीर यूज करते यस वो भी जब चाहे।
अच्छा
ये नहीं कि 24 घंटे रहेगा बाबा ने क्लियर किया मैं 24 घंटे इसके शरीर में बैठा नहीं रहता हूं मैं आता हूं जाता हूं क्योंकि उसका अपना तो शरीर है नहीं वो तो धर्मशाला में आता है धर्मशाला में जब चाहो रहो जब चाहो चले जाओ उसके लिए तो धर्मशाला है ब्रह्मा बाबा का तन। किराया भी पता नहीं वो देता है कि नहीं देता है मेरे को मुनि में रख लेता तो मैं हिसाब ले लेता वापस इस बहाने मेरी मुलाकात हो जाती। तो ब्रह्मा बाबा ने मेरे को कुछ रखा ही नहीं अपने लिए
पार्टी नहीं
हाँ पार्टी नहीं मैं सारा
बड़ा पार्टी है
पाई पाई का हिसाब ले लेता बाबा से।
आपको बहुत बड़ा पार्टी है इतने लोगों को
दूसरा शरीर लेते तो वो कर्म बंधन शुरू होता है। दूसरा शरीर लेते ही वहां का जो कर्म बंधन है वो शुरू हो जाएगा। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते बाप ने समझाया है सब बिल्कुल ही बेसमझ है परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े हैं। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं 30 प्राइस देते रहते हैं ये भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वो तो जानते ही नहीं कि 30 किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो ये तो कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो। वे तो है ही शांति धाम हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं परंतु ये तो मन की शांति कहते हैं। वे जानते नहीं कि शांति कैसे मिलेगी वे नहीं जानते कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है यहां शांति कैसे मिल सकती है। हाँ सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है जिसकी स्थापना बाप करते हैं यहां तो कितना कितनी अशांति है। ये सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी, सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी। वे वर्षा था बाप का, और दुख अशांति कंगालपना ये वर्षा है रावण का। जो कुछ नहीं है वो हमें क्या देता है, दुख देता है, अशांति देता है, कंगालपना देता है, ये वर्षा है रावण का। जो है ही नहीं, जो है ही नहीं मीन्स बाबा के ज्ञान का अभाव हमें दुख अशांति कंगालपना ये देता है। ये सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला है, बाप कहाँ रहने वाला है, परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है। जो सुख धाम का हमको वर्षा देते हैं वो हम आत्माओं को समझा रहे हैं। ये तो जानते हो नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, वर्ल्ड तो है ही सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है, ये भी मनुष्यों को पता नहीं। कितनी कमाल की बात है कि ये भी मनुष्यों को पता नहीं। न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है, न्यू वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है, ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। कितनी ये लाइन क्लियर है, दोनों युग होते हैं। जब तक बाप रहते हैं, जब तक बाप पढ़ाते हैं, जब तक परिवर्तन होता है तब तक संगम रहता है, क्योंकि बाप का प्रवेश करना संगम का शुरू होना, और बाप का परम धाम सबको ले जाना संगम खत्म सतयुग शुरू। सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है, ये भी तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ये है, स्थापना विनाश पालना, स्थापना विनाश पालना, ये तो कॉमन बात है ना। परंतु ये बातें तुम बच्चे भूल जाते हो, नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे। निरंतर याद रहनी चाहिए, बाबा हमको अब नई दुनिया के लायक बना रहे हैं। तुम भारत वासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी निकल आते, फिर उन इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, उससे उस जैसे उसमें हुए थे, बस सनातन धर्म के थे कृष्ण धर्म में चले गए, अब वहां से कृष्ण धर्म से निकल के आएंगे फिर से सनातन धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, मनुष्यों को समझाना है। ये पुरानी दुनिया अब बदलती है, पुरानी दुनिया अब बदलती है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है, इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वे नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको फिर ऊंचे से ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यहाँ मुख्य है जगत अम्बा। मुख्य कौन है, जगत अम्बा, जगत पिता। बाप आते भी यहाँ हैं, ब्रह्मा के तन में प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहाँ ही होती है। ये व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं, ये राजयोग सीख फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती, ये समझना चाहिए ना। मनुष्य ही समझेंगे, वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। वे नॉलेजफुल पुनर्जन्म रहित है, ये नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है। परखने की भी बुद्धि चाहिए ना, कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही नब्ज देखनी चाहिए, कुछ बुद्धि में बैठता है ऐसे ही नब्ज देखनी चाहिए। एक अजमल खां नामी ग्रामी वैद्य होकर गया है, कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता, मतलब कोई भी गया उसको देखते ही समझ जाता था इसको क्या बीमारी है। अब तुम अजमल खां रोड देखा दिल्ली में है, वहां अजमल खां हॉस्पिटल भी है मेरे ख्याल से। तो अजमल खां एक डॉक्टर हुआ और उसकी विशेषता कि वो देखते ही बीमारी समझ जाता। नाजी नबज क्या, आप सामने आए हो बस इतना ही काफी, चक्कर देखते ही पता लग जाता था इसको क्या बीमारी, नजर से। नब्ज तो देखना तो बहुत बड़े नाड़िया पे झूठे सच्चे। बच्चों को भी समझना चाहिए कि ये लायक है या नहीं, बच्चों को भी समझना चाहिए कि ये लायक है या नहीं। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ, तुम अपने को आत्मा समझ। बाप जो है, बाप को याद करो नहीं का, बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद कर। आंख बंद करके नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते, क्योंकि वो परम अवस्था में रहते, हमारे लिए वो परम अवस्था में है। थोड़ी देर के लिए ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म या स्थूल शरीर का आधार लिया, पाठ बजाया, उसके बाद वो कहां है, परम अवस्था। क्योंकि इस संसार का कर्म बंधन नहीं है उसके पास, कर्म बंधन ही नहीं है। कर्म बंधन तब हो जब शरीर ले। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सब तो नहीं है, सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ, प्रीत तो मेरे साथ लगाओ, लगाओ ना। माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती है, माया भी देखती है। हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है, फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें ही मेहनत है। श्रीमत कहती है माम एकम याद करो, तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वो पावन बन जाएगी। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल, कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अलफ और बे, बस दो अक्षर भी याद नहीं कर सकते, दो अक्षर भी याद नहीं कर सकते हैं। बाबा कहे अलफ को याद करो, फिर अपनी देह को दूसरे की देह को याद करते रहते, क्या करते रहते हैं, अपनी देह को दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है, आत्मा को क्या मिला है, तीसरा नेत्र मिला है, मुझे देखने समझने का, उससे काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार हैं। त्रिकालदर्शी भी क्या है, नंबरवार हैं। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योग बल कम है, देही अभिमानी पना बहुत कम है, थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, गिरते रहते हैं, उठते हैं गिरते हैं, आज उठे कल फिर गिर पड़ते हैं। देह अभिमान मुख्य है, फिर और विकार लोग मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है ना, माताओं में मोह जास्ती होता है, अब बाप उससे छुड़ाते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है फिर मोह क्यों रखते हो भाई। उस समय शक्ल बातचीत ही बंदर मिसल हो जाती है। बाप कहते हैं नस्तो मोहा बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो, पापों को का बोझा सिर पर बहुत है वो कैसे उतरे। परंतु माया ऐसी है जो याद करने नहीं देगी, बल कितना भी माथा मारो घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं हम मोस्ट बिलीव्ड बाबा की ही महिमा करते रहें, बाबा बस आपके पास आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते हैं। बुद्धि और तरफ चली जाती है, बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये नंबर वन में जाने वाला भी पुरुषार्थी है ना, ये जो नंबर वन में जा रहा है ब्रह्मा बाबा, ये भी पुरुषार्थी है, मेहनत कर रहा है। बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गीता में भी है भगवानो वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं, ये तो सब मानते हैं कि वो लिबरेटर है, गाइड है, सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है, तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते भाई। ऐसे बाप की जयंती क्यों नहीं मनाते हैं। भारतवासी ही नहीं मनाते, इसलिए ही भारत की ये बुरी गति है, भारतवासी भी नहीं मनाते। कितनी कमाल की बात है, हमारी शिव जयंती पर भी एक साल छुट्टी होती है, एक साल छुट्टी नहीं होती है दिल्ली में बनाने के लिए। इसलिए भारत की ये बुरी गति हुई है। मौत भी सामने है, मौत भी बुरी गति से होता है। वे तो बॉम्ब ऐसे बनाते हैं गैस निकला और खलास, जैसे क्लोरोफार्म लग जाता है, ये भी उन्हों का बनाने ही है। बंद होना इम्पॉसिबल है कि अभी ऐसे भयानक बम ना बनाएं, ये बंद होना असंभव है। जो कलप पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा। इन मुसलों और नेचुरल कैलेमिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। ड्रामा विनाश जरूर होगा, जरूर कराएगा। रक्त की नदियां यहां बहेंगी। सिविल वार में एक दो को मार डालते हैं ना, तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं कि ये दुनिया बदल रही है। अब हम जाते हैं सुख धाम। तो सदैव ज्ञान की अति इंद्रिय सुख में रहना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। छी छी देह से नष्ट मुआ होते जाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं अलग को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। सेकंड में बादशाह का बच्चा हुआ तो गया बच्चा बादशाह बना ना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करते रहो, चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बैगर टू प्रिंस, सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बैगर टू प्रिंस। कितना अच्छा है। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी होती है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे ट्रस्टी बन कर रहो तो ममत्व मिट जाए। परंतु ट्रस्टी बनना मासिका का नहीं है, ये खुद ट्रस्टी बने हैं ब्रह्मा बाबा। बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं, ये कुछ भी लेते हैं क्या? कहते हैं तुम ट्रस्टी हो संभालो। ट्रस्टी बने तो फिर ममत्व मिट जाता है। कहते भी हैं ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान हो पड़ता है या कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ते हैं। मिलता है तो खुशी होती है, जब हो जाता है तो दुख होता है। जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है तो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है? बच्चा ईश्वर ने दिया, बच्चा भगवान ने दिया, उसने वापस ले लिया, फिर क्यों रो रहे हो भाई? फिर रोने की क्या दरकार है? परंतु माया काम नहीं है, मासी का घर थोड़े ही है। इस समय बाप कहते हैं, तुमने हमको बुलाया है कि इस पतित दुनिया में हम नहीं रहना चाहते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो, साथ ले चलो, परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं, परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होंगे ना, तब तो आत्माओं को ले जाएंगे। तो ऐसे बाप के साथ प्रिय बुद्धि होनी चाहिए। एक से ही लव रखना है, एक से ही लव रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए, वो बेकायदे हो जाता है। बाप कहते हैं, मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूं, ये इनका शरीर है ना, तुमको याद बाप को करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा, शिव भी बाबा है, विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव है निराकार, शिव है निराकार, बाप है निराकार बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा है कैसा है? साकारी बाप। प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अब तुम साकार द्वारा, अब तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो। किसके द्वारा ले रहे हो? साकार द्वारा वर्षा किससे ले रहे हो? निराकार बाप से ले रहे हो। दादा इनमें प्रवेश करते हैं तब कहते हैं दादे का वर्षा तुमको मिलेगा। बाबा क्या करते हैं? इसमें प्रवेश करते हैं तो क्या कहते हैं? दादे का वर्षा तुमको मिलेगा। बाप द्वारा हम लेते हैं, दादा ग्रैंडफादर है। दादा क्या है? दादा है हमारा ग्रैंडफादर। निराकार बाप है दादा है ग्रैंडफादर, फादर है निराकार। बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है, दादा ग्रैंडफादर है निराकार शिव बाबा।
हाँ जी,
वही समझा रहा हूँ। बाप द्वारा हम लेते हैं, दादा ग्रैंडफादर है शिव बाबा जो है ना, वो हमारा दादा है।
इससे पहले वाली लाइन,
इससे पहले वाली लाइन। निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो, दादा इनमें प्रवेश करता है,
इसमें शिव बाबा दादा बन गए।
हाँ, तब कहते हैं दादे का वर्षा मिलता है। मतलब जैसे मान लो पिताजी जो है ना बीच में है, और कोई भी जायदाद दादा के पास है, और दादा जो है ना अपने बेटे के नाम नहीं कर गया, वो मर गया, और मतलब जैसे एक के चार बच्चे हैं, तो दादा मर गया, तो चारों बच्चों में से यदि उनका कोई पोता या पोती खड़ी हो जाए, खड़ा हो जाए कि मेरा हिस्सा मुझे दिया जाए डायरेक्ट, ले सकता है। यदि वो नाम कर गया है तो जिसके नाम कर गया वो है।
अगर वो जमीन भाई दादी के नाम से हो तो
जो भी दादी लाई दादा लाई दादी लाई एक ही बात है। मतलब पोता पोती पल पोता पल पोती भी खड़ा हो जाए कि मेरा बाप खराब है वो मेरे को हिस्सा नहीं देगा मेरा हिस्सा मुझे डायरेक्ट दे दो। वो कोर्ट में चला जाए तो उसे डायरेक्ट हिस्सा मिलेगा। इसको बोला जाता है दादा लाई। इसे कहा जाता है दादा लाई। ये दादा लाई है भाई है नहीं। दादा लाई का मतलब ये। तो इसलिए शिव बाबा कहते ये ग्रैंडफादर ये है बाप तुम्हारा मैं हूं तुम्हारा ग्रैंडफादर। ठीक है क्या नहीं। और बाप है साकार। बाप है साकार कौन हुआ ब्रह्मा बाबा। और ग्रैंडफादर है निराकार। थाली का बैगन है ना हमारा बाप।
बाबा एक बार तो बन गए दादा
हाँ
और बाप द्वारा हम लेते हैं ब्रह्मा
बाप है ब्रह्मा
और दादा ग्रैंडफादर है फिर ब्रह्मा बाबा को ले आए
शिव बाबा। नहीं नहीं ये ग्रेट लगा शिव बाबा के साथ ग्रैंडफादर लगता है ब्रह्मा के साथ लगेगा तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर।
अच्छा
ये भी शिव बाबा ही है कोई अलग से नहीं है। बड़ा भाई वो बड़ा भाई है। इसलिए बाबा आज बन गया है ग्रैंडफादर और ब्रह्मा बाबा बन गए हैं फादर और बाप है हमारा साकार और दादा है हमारा निराकार। ये वंडरफुल नई बातें हैं ना। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु समझते नहीं। शिव को उड़ा दिया है बाप। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। हम स्टूडेंट हैं बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है। अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो फिर औरों को सुनाते हो। ये 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है ये समझाना है। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है फिर 84 जन्मों में भारत नर्क बनता है। ये तो बहुत ही सहज समझने की बात है। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया है ये तो भारतवासियों को ही समझाना चाहिए। टीचर्स को भी समझाना चाहिए। वे है जिस्मानी नॉलेज ये है रूहानी नॉलेज। वो मनुष्य देते हैं ये गॉड फादर देते हैं। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तो उनके पास मनुष्य सृष्टि की ही नॉलेज होगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 इस छी छी देह की दुनिया को नहीं देखना। इस छी छी देह की दुनिया को नहीं देखना। पूरा नष्ट मोहा बनना है। ज्ञान के अति इंद्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे अब ये दुनिया बदल रही है। हम जाते हैं अपने सुख धाम। ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान है ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भाव। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। कौन से भाव से स्वार्थ नहीं होना। सदा मुक्त रहो, हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थ पना होगा उतना ही पर उपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्वयं के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, स्वयं के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्लोगन है, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आज हमने कैसे सकाश देना है इसको ध्यान से समझना है। ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो, इसमें तबीयत खराब है ठीक है इसका कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी बीमार हो, शरीर पड़ा है पड़ा रहने दो, आप अपना मनसा सेवा में लगे रहो। समय की बात नहीं है, किस में भी करो, दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जब भी मौका मिले, जब आपको फ्रेशनेस महसूस हो, ताजापन महसूस हो, आप सेवा कर सकते हो, क्योंकि बिना फ्रेशनेस के सेवा नहीं होगी। थका हुआ नहीं कर सकता, दर्द में देहभान है, देहभान के कारण दर्द में करा रहा है नहीं कर सकता। वो देह को भूले तब सेवा कर सकता, दर्द को भूल जाए तो सेवा कर सकता है। बाप को देखो, रात को भी आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही, ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चों को बच्चे बेहद की को सकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। नजदीक वालों को देंगे तो दूर वालों पर कहां जाएगी बुद्धि, आप दूर वालों को दो तो नजदीक वालों को ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इस बेहद की साकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।